नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश धारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु से इस तरफ आ जाओ, इस तरफ माता जी से, यहाँ से तो मदन मोहन के परिक्रमा में आए हुए सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन से लीला समापन के पश्चात लगभग 500 वर्ष पूर्व क्या परिस्थिति थी उसका वर्णन करते हैं। कालेन वृंदावन केली वार्ता लुप्ते त्वां ख्यापयितुं विशिष्य कृपामृतेनाभिशिषेश्च देवस्तत्रैव रूपं च सनातनं च। कहते हैं भगवान की काल शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि भगवान श्री कृष्ण ने आकर 11 वर्ष तक वृंदावन में इतने रोमांचक लीलाएं की, लेकिन उसके बाद भी लगभग जब भगवान श्री कृष्ण के पौत्र जिनका नाम था वज्रनाभ ने भगवान के अलग अलग विग्रहों की स्थापना वृंदावन में की, तो गोविंद देव, मदन मोहन, गोपीनाथ, ये विग्रहों को वज्रनाभ जी ने स्वयं बनवाया, उत्तरा देवी से उसको प्रमाणित कराया और उनके लिए मंदिरें स्थापना की। लेकिन लगभग 1000 एडी में, 1000 वर्ष पूर्व, महमूद गजनी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उनके आक्रमण से मथुरा पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा और मथुरा के और वृंदावन के जितने मंदिर थे और ये सारे विग्रह थे उनको ध्वस्त कर दिया गया। तो वहाँ के ब्रजवासियों ने इन विग्रहों को संरक्षण देने के लिए उसको मंदिरों से गायब कर दिया। लेकिन वज्रनाभ ने भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के पश्चात जो लीला स्थलियों को स्थापित किया था वो सारी लीला स्थलियाँ लगभग खंडित हो गईं। और 500 वर्ष पूर्व जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रथम बार वृंदावन में प्रवेश किए तब संपूर्ण ब्रजभूमि वृंदावन केवल एक जंगल दिखता था, केवल जंगल के वृक्ष थे और कुछ नहीं था और वहाँ पर खेत इत्यादि थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ लीलाएं की उन लीलाओं के स्मारक के रूप में जो उनके पौत्र ने स्वयं मंदिरें स्थापित की थी, उनके पौत्र ने जिन विग्रहों की स्थापना की थी, लेकिन वो सभी लगभग श्री चैतन्य महाप्रभु के वहाँ पर आने तक समाप्त हो गए थे। तो इसलिए यहाँ पर कविराज गोस्वामी कहते हैं कालेन, काल के प्रभाव से वृंदावन केली, भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन के लीलाओं की वार्ता, उसके बारे में जानकारी कि भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन के साथ कुछ कनेक्शन था 1500 एडी में समाप्त हो गया था। सब लोग पूछते थे जंगल क्या है, लोग कहते हैं लोग यहाँ गोवर्धन इको विलेज में आते नहीं है इतना जितना आना चाहिए। वो तो 500 वर्ष पूर्व वृंदावन के बारे में भी लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कि ये कृष्ण के साथ कनेक्शन है। लुप्तेती अर्थात वो जानकारी समाप्त हो गई थी। तो वहाँ पर केवल लोकल किसान रहते थे, अगर उनको पूछते थे कि ये सब क्या है, बोलते थे ये जमीन है, हम लोग का चावल और अनाज उगता है, हम लोग यहाँ खेती करते हैं। और छोटे से तालाब को दिखाकर पूछो ये क्या है, बोलते थे यहीं से हम लोग का चावल की खेती के लिए पानी आता है, महाप्रभु ने आके बता रहे ये राधा कुंड है। नहीं तो वहां पर किसान स्नान करते थे और उनको लगता था हमारी खेती में काम आता है ये पानी, वो राधा कुंड है करके इसकी जानकारी महाप्रभु ने दी। लुप्ते थी अर्थात वो लुप्त हो गया था। त्वाम ख्यापयितुम विशिष्य कृपामृतेना अभिशिषेश्च देवस तत्रैव रूपम च सनातनम च। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप और सनातन गोस्वामी पाद को ये विशेष उत्तरदायित्व दिया कि आप ब्रज भूमि वृंदावन धाम को एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में प्रमाणित करो, सिद्ध करो, स्थापित करो, प्रकाशित करो, विज्ञापन करो। तो ये उत्तरदायित्व को लेकर रूप और सनातन वृंदावन में 1516 फरवरी में प्रकट हुए, है कि नहीं? तो इसलिए कहा गया है दुई भाई राज प्रभु कृपा राज कृपा पात्र व्यवहारे राज मंत्री होए राज पात्र। कहने के लिए वो लोग राज मंत्री थे और राजा की बड़ी कृपा प्राप्त हुई थी। विद्या भक्ति बुद्धि बले परम प्रवीण तबु अपना के माने तृण होते हीन। विद्या भक्ति बुद्धि और बल में बहुत प्रवीण थे लेकिन फिर भी अपने आप को तृण से भी हीन मानते थे। तार दैन्य देखे सुनी पाषाण विदरे आमे तुष्ट हो या कहिलु दुहारे। उनके दैन्य को देखकर और सुनकर तार दैन्य देखी सुनी पाषाण विदरे पत्थर भी पिघल जाते थे और आमी तुष्ट होइया। महाप्रभु कहते मैं उन पर संतुष्ट होकर कहिलु दुहारे उनको कहने लगा। तो क्या कहने लगा कि उत्तम होइया हीन करे मानह अपनारे अचिरे करीबे तुम्हार अचिरे करीबे कृष्ण तुम्हार उद्धारे। जो आप अलग अलग प्रकार के उत्तम लक्षण रखते हुए भी अपने आप को बड़ा हीन मानता है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बहुत कम समय में प्राप्त हो जाती है, ये मैं आश्वासन उनको देता हूँ। इस प्रकार महाप्रभु ने रूप और सनातन पर कृपा की और रूप और सनातन के ऊपर अपना विशेष आशीर्वाद दिया। कृष्ण कृपा बिना कृष्ण शक्ति बिना नहीं तारा प्रवर्तन। बिना कृष्ण की शक्ति के प्राप्त किए किसी प्रकार का महान क्रांतिकारी कार्य संभव नहीं। इसलिए रूप और सनातन भी महाप्रभु के इस आदेश को लेके आए जिससे कि जगत के सामने वो भूमि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के ऐसे नित्य शाश्वत प्रेमी भक्त उनकी सेवा में उन्मादित रहकर निरंतर उनका चिंतन करते थे, ऐसे ब्रजवासियों का उल्लेख पूरे विश्व के सामने प्रकट करने के लिए महाप्रभु ने ब्रज भूमि वृंदावन को स्थापित किया। क्योंकि माध्वाचार्य जी एक प्रश्न उठाते हैं कि सन्यास क्या है, जो अपने निहित कर्मों को त्यागना उसको सन्यास कहते हैं। तो भगवान जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम है उनको तो इस जगत के कोई कर्म बांध नहीं सकते, उनको सन्यास लेने की क्या आवश्यकता? तो इसलिए आचार्यगण बताते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में थे तो वृंदावन में ब्रजवासियों की क्या लीला थी। ब्रजवासी निरंतर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते थे और उस चिंतन से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बांध लिया था अपने प्रेम से। इसलिए ब्रह्मा जी अपने प्रार्थनाओं में कहते हैं तदस्तु मे नाथ स भूरि भागा भवित्र वान्यत्र तुवातिरश्चाम येनाहमेकोपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम। मुझे भी ब्रजवासियों जैसा जन्म चाहिए इस ब्रजभूमि वृंदावन में जिससे कि मैं भी कृष्ण का निरंतर चिंतन कर सकूं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मन मना भव मद भक्तो, निरंतर चिंतन करो। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश्य निवसिष्य मय्येव अत ऊर्ध्वम् न संशय। 12वें अध्याय में कहते हैं सबसे प्रगतिशील भक्त कौन जो निरंतर मेरा चिंतन करे। भक्ति के धंधे में करोड़पति कौन जिसके चिंतन में क्षण भर का स्खलन न हो, क्षण भर के लिए भी जो कृष्ण का विस्मरण न करे, जो केवल कृष्ण का स्मरण करके आमदनी करता रहे और इधर उधर अन्य किसी विचारों से जिसका विचार स्खलित न हो और उसका कोई खर्चा ही न हो, जिसकी केवल कमाई हो और खर्चा ही न हो, उसका तो मुनाफा ही होने वाला है। तो इसलिए कृष्ण का स्मरण ये ब्रजवासियों ने इस प्रकार सिद्ध किया कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण नहीं त्यागा, इसलिए वो बड़े पूजनीय और प्रशंसनीय हो गए। क्योंकि सामान्यतया जब सब कुछ ठीक चलता है तो कृष्ण का स्मरण करना अनुकूल होता है और जब माया देवी हाथ में डंडा लेकर पिटाई करती है तब भगवान श्री कृष्ण को हम भूल जाते हैं और सोचते हैं कि उनका नाम लेते हुए भी पिटाई क्यों हो रही है। तो फिर घबराहट हो जाती है कि इनका नाम और लें कि नहीं लें, क्योंकि इतना नाम लेने पर यह हाल हुआ है, तो और नाम लेंगे तो क्या होगा। सर्वम काल कृतम मन्ये भवताम च प्रियम सपालो यत वशे लोको वायोरिव घनावली। भीष्मदेव कहते हैं पांडवों को, आप भगवान का निरंतर चिंतन करते रहे, जितना चिंतन किए उतना अधिक आपके ऊपर अलग अलग प्रकार से आपातकालीन परिस्थिति आई, ये भगवान की इच्छा से आपकी परीक्षा लेने के लिए। इसलिए जितनी कठिन कठिन परीक्षा में जो उत्तीर्ण होता है उतना ऊंचा इस जगत में उसको पद और उत्तरदायित्व और पुरस्कार मिलता है। उसी प्रकार जितने कठिन परिश्रम में, जितने कठिन परिस्थितियों में डालकर भगवान अपने भक्तों को परीक्षा करते हैं, और जितनी कठिन परीक्षा लेने पर भक्त भगवान का स्मरण न त्यागे, भगवान उससे संतुष्ट होते हैं और उसको अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण करते हैं कि ये असली भक्त है, कि इतनी कठोर परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने पर भी ये मुझे भूला नहीं, मेरा स्मरण छोड़ के और शिवजी गणपति जी के पास कहीं गया नहीं, मेरा ही चिंतन कर रहा है। तो इसलिए सबसे अधिक ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण की सेवा चिंतन 11 वर्ष तक की उनके सानिध्य में, और 100 वर्ष के लिए कृष्ण उनको छोड़ के चले गए, लेकिन ब्रजवासियों ने क्षण भर के लिए भी विचार नहीं किया कि जो हमें छोड़कर चले गए उनको उनका चिंतन करना छोड़ दो। तो चाहे वो कितना भी हमें त्याग दें, लेकिन हम उनका स्मरण नहीं त्यागेंगे, ऐसा संकल्प करके ब्रजवासी निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहे। इसलिए महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में राधा रानी का भाव लेकर कहते हैं, वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिनवन सही सब रासादिक लीला सही ब्रजेर ब्रजजन माता पिता बंधुगण बड़ चित्र के मने पासरिला। कि आप किस प्रकार हे कृष्ण हम सभी ब्रजवासियों को भूल गए क्या? वृंदावन गोवर्धन यमुना सारे ब्रज के वनों को जो रासलीला की स्थली हैं, ब्रजवासियों को माता पिता बंधुगण सबको भूल गए। बड़ा विचित्र बात है, जिनके साथ इतना घनिष्ठ प्रेम था और इतना घनिष्ठ आदान प्रदान चल रहा था और ऐसा लग रहा था जिनके संगति के बिना क्षण भर हम नहीं रह सकते, अचानक बिना सूचना दिए आप निकल पड़े और 100 वर्ष तक गायब हो गए। लेकिन आप भले हमें छोड़कर चले जाओ, आप भले हमारे तन को छोड़कर चले जाओ, हम आपको अपने मन से नहीं निकलने देंगे। ऐसा संकल्प जो करता है वो वास्तव में ब्रजवासियों के पद चिन्हों में चलता है। इसलिए ब्रजभूमि वृंदावन उन लोगों के लिए प्रिय है जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और चिंतन के प्रति भूख है। गोविंदा रेस्टोरेंट को देख के किसके मुंह में पानी आता है? जिसको भूख लगी है। निर्जल एकादशी के दिन गोविंदा को देख के क्या लगता है? मुंह में पानी भी आए तो कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फास्टिंग है। कोई फलाहारी बाबा है जो फल ही खाता है, वो कितना भी 56 भोग उसको दिखा दो, वो कहेगा इसका क्या अर्थ है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारा इसके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं। जैसे भक्त लोग कांदा लहसुन खाना छोड़ दिए, तो चाहे कांदा लहसुन का बना हुआ कितना भी उत्कृष्ट आइटम 5-स्टार होटल का ला के दिखा दो, भक्त लोग बोलेंगे एहो भाई बेकार है, हमारे कोई काम का नहीं। तो जिस वस्तु के प्रति भूख होती है उसको देखकर उसके प्रति लालसा बढ़ती है। तो सबसे पहले भूख होनी चाहिए, तब जब भूख होगी तब वस्तु की सार्थकता बढ़ती है। उसी प्रकार लोग प्रश्न पूछते हैं कि आप लोगों ने वृंदावन क्यों बनाया है, आप लोगों ने मदन मोहन का मंदिर क्यों बनाया है। ये प्रश्न उस व्यक्ति के मन में उठता है जिसके जीवन में कृष्ण के चिंतन के प्रति कोई लालसा नहीं, या फिर केवल वैष्णव का वस्त्र धारण करके भी वो अभी तक इस बात को पकड़ नहीं पाया कि हमारे संप्रदाय का मूल धंधा है कृष्ण का चिंतन करना, जैसे गोपियां करती थीं। महाप्रभु ने कहा किस प्रकार से हमें पूजा करनी है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्य काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण वा कल्पिता। तो इसलिए सबका अपना अपना काम है। गौड़ीय संप्रदाय का मेन काम है कृष्ण का चिंतन, और इसलिए भगवान महाप्रभु के रूप में आए। वो आके कोई मंदिर नहीं बनाए, गिरजाघर नहीं बनाए, बड़े बड़े ग्रंथ स्थापित नहीं किए, उन्होंने कोई बहुत बड़ा प्रशासन का कार्य नहीं किया। महाप्रभु दिन रात केवल एक ही कार्य करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम था उनका निमाय पंडित नवदीप में। चाहते तो पूरा जीवन भर इतने ग्रंथ लिख देते कि अभी तक हम लोग स्टार्ट भी नहीं कर पाते थे, इतने ग्रंथ लिख देते। अच्छा हुआ नहीं लिखा, कविराज गोस्वामी ने जो लिखा वही पढ़ पढ़ के हम लोग थक जाते हैं। महाप्रभु स्वयं लिख देते तो क्या होता। केवल 8 श्लोक लिख दिए शिक्षाष्टक, लेकिन बाकी समय क्या किए, कृष्ण का चिंतन। 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में रहकर एक छोटे से 10x10 कमरे के अंदर बैठकर आनंद ले रहे थे। तो इसलिए महाप्रभु ने बताया कि मनुष्य जीवन में आनंद पाने के लिए आपको हजारों एकड़ जमीन नहीं चाहिए, आपको हजारों इंद्रिय विषय वासना पूर्ण करने के लिए वस्तु नहीं चाहिए, आपको हजारों लोगों के साथ संबंध स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं, हजारों लोगों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। आपके जीवन का वास्तविक सुख और आनंद आपके अंदर बैठा हुआ है, और जो आपके गले में छोटा सा झोली लटका हुआ है उसके अंदर जो माला है वो फांसी का फंदा नहीं है, वो आनंद का फव्वारा है। और उसको अपने हाथ में लेकर जब प्रतिदिन हम नाम लेते हैं, उससे जीवन भर का अमृत और आनंद उसके अंदर समाविष्ट है। ये महाप्रभु ने गंभीरा में 18 वर्ष हम लोग के सामने प्रस्तुत कर दिया कि अगर खोजना है कुछ तो उसको खोजो जो कि 16 अक्षर के अंदर छिपा हुआ है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन जब हम लोग नाम लेने लगते हैं और चिंतन करने लगते हैं तो लोग इस जगत के अलग अलग विषयों की चिंता मन में उत्पन्न होती है कि ये वस्तु नहीं मिला, ये वस्तु चला गया, ये वस्तु को कैसे प्राप्त किया जाए, ये वस्तु वो वस्तु। अलग अलग इस जगत के व्यक्ति वस्तु पदों के प्रति हमारा विषय वासना इतनी तीव्र रहती है कि वो सारी चिंताएं हमारी चिंतन में बाधा बनकर भगवत चिंतन में बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है। इसलिए भगवान ने कहा कि सबसे पहले इन सभी वस्तुओं के साथ जो तुम्हारा संबंध है उसको काटो। इन वस्तुओं के साथ संबंध काटने के बाद फिर कृष्ण के साथ आप संबंध जोड़ पाओगे। इसलिए इसको कहते हैं हमारा संबंध ज्ञान। ये हमारा फैन आ गया। कथा सुनने के लिए। तो इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान अर्थात कृष्ण के साथ संबंध को छोड़कर हम लोग इस जगत के वस्तुओं के साथ संबंध स्थापित करते हैं। और इसलिए भगवान मदन मोहन के रूप में प्रकट होते हैं, जिससे कि हम इस जगत के वस्तुओं के प्रति संबंध को छोड़कर उनके साथ संबंध स्थापित कर सकें। और भगवान हमें मोहित करते हैं उनके चरण कमलों के प्रति, इसलिए इनका नाम है मदन मोहन। तो इसलिए ये मदन मोहन विग्रह मोहम्मद गजनी के आक्रमण के पश्चात वृंदावन की धरती के अंदर समाविष्ट हो गया, किसी को कुछ पता नहीं था। तब फिर अद्वैत आचार्य के स्वप्न में प्रकट हुए, जब अद्वैत आचार्य वृंदावन में थे और अद्वैत वट में मदन मोहन जी को अद्वैत आचार्य जी ने स्थापित किया। और फिर वहाँ एक चौबे परिवार था मथुरा का, उनके पास समर्पित किया। और चौबे परिवार बड़ा प्रेम से इनके साथ आदान प्रदान करता था, बच्चे की तरह इनके साथ आदान प्रदान करते थे, जैसे बच्चों को खिलाते पिलाते हैं वैसे ही बड़े प्रेमी भाव से वात्सल्य भाव से इनकी सेवा हो रही थी। उस समय जब सनातन गोस्वामी पाद आए, लगभग मैंने आपको बताया 1516 फरवरी में उनका प्रवेश हुआ। प्रभुर आज्ञाए कोयला सब शास्त्र और विचार, ब्रजेर निगूढ़ भक्ति कोरिला प्रचार, नाना शास्त्र आने कोयला धर्म ग्रंथ सार, मूढ़ अधम जनरे तेहों कोरिला निस्तार। सब इस जगत के अधम जीवों का उद्धार करने के लिए, उन लोगों को ज्ञान देने के लिए, महाप्रभु की आज्ञा को मस्तक पर धारण करके, संपूर्ण अनुशासन अपने जीवन में धारण कर, उचित वैष्णव शिष्टाचार किस प्रकार का होना चाहिए इस बात को अपने हृदय में धारण करके सनातन गोस्वामी पाद ने अपने हाथ में कलम ली और ग्रंथ लिखना आरंभ किया। और उन ग्रंथों में प्रमुख ग्रंथ था बृहद भागवतामृत, हरिभक्ति विलास, और रूप गोस्वामी पाद ने तो इतने सारे ग्रंथ लिखे कि पूछो मत। तब सनातन गोस्वामी जब माधुकरी करते हुए जब चौबे परिवार के पास जाकर देखे सर्वप्रथम मदन मोहन के सुंदर दर्शन को, उनका मन उनके प्रति इतना आकृष्ट हुआ, उनके मन में इच्छा हुई कि इनकी सेवा प्राप्त हो तो कितना अच्छा होगा। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि इतने प्रेम और तीव्रता के साथ ये लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनके सेवा में एक ऐसा वात्सल्य भाव था जो कि सामान्य भगवान के औपचारिकता से पूर्ण, वैभवपूर्ण, ऐश्वर्यपूर्ण सेवा से भिन्न दिख रही थी। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है इन लोगों को इस बात की जानकारी न हो तो किस प्रकार विग्रह की सेवा होनी चाहिए। तो सनातन गोस्वामी पाद ने अपने हृदय की प्रेरणा से ही उनके सामने व्यक्त कर दिया कि भाई कुछ औपचारिकता अपनी सेवा में आप निर्धारित करो, अन्यथा ये कुछ सहज हो जाए, आपकी सेवा बहुत सहज हो रही है और ये उचित नहीं, अति परिचयात अवज्ञा न हो जाए। तो उन्होंने अपने हृदय के वास्तविक भाव व्यक्त कर दिए, लेकिन रात्रि के स्वप्न में मदन मोहन प्रकट हुए चौबे परिवार के पास और बोलने लगे कि आप लोग बड़े फॉर्मल तरीके से बहुत औपचारिकता के साथ सेवा आरंभ कर दिए, पहले जो प्रेम की सेवा थी उसमें ज्यादा मजा आता था, तो मुझे वैसे ही सेवा चाहिए, मदन मोहन ने कह दिया। तो फिर उन्होंने फिर आरंभ कर दिया और फिर सनातन गोस्वामी पाद ने जब देखा तो उन्होंने सनातन गोस्वामी पाद को कह दिया कि प्रभु हमको बोले कि पहले जैसा में ज्यादा आनंद आ रहा है और ये नया स्टाइल उनको मजा नहीं आ रहा, तो हम फिर वैसे ही कर रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी पाद और उदास हो गए दो कारणों से। पहला कि उनको लगा कि भगवान और उनके इतने महान भक्त के भाव के बीच में मैं कुछ हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, यह अनुचित था, कोई आवश्यकता नहीं थी मुझे कुछ इनको इस प्रकार का उपदेश देने का, मुझसे अपराध हो गया। और दूसरा कि सनातन गोस्वामी पाद ने सोचा कि मदन मोहन देव का चौबे परिवार के प्रति इतना स्वाभाविक और सहज प्रेम है कि वो इनकी सेवा तो कदापि नहीं छोड़ेंगे, तो फिर मेरे हृदय में जो अभिलाषा है कि मदन मोहन जी की मैं सेवा करूं वो कभी पूर्ण नहीं होने वाली। तो इन दो कारणों से वो उदास हो गए, लेकिन फिर मदन मोहन देव भी परमात्मा है सबके हृदय में, तो उन्होंने इन चौबे परिवार के ही सपने में आकर फिर कहा कि देखिए आप लोग वृद्ध हो रहे हो, कब तक सेवा करते रहोगे, आपसे भी सेवा नहीं हो पाएगी, और बहुत अधिक वृद्ध होने पर जब सेवा नहीं हो पाएगी आप लोग मुझे ही कोसोगे कि कहाँ से आ गया मदन मोहन, जबरदस्ती सेवा करनी पड़ रही है, इसलिए आप कृपा करके। प्रभुपाद ने कहा जब डीटी वर्शिप के प्रति प्रेम न हो तो ये विग्रह गलत ग्रह लगने लगता है ना, लगता है कि गले में बहुत बड़ा एक पत्थर आ गया। तो इसलिए अर्च विग्रह की सेवा के लिए भाव आवश्यक है और भाव के लिए अच्छी प्रकार से भक्ति और साधना करना आवश्यक है। तो इसलिए सनातन गोस्वामी पाद के पास मुझे दे दो, ये बाबा आते हैं वो मेरी सेवा करेंगे, इनका आगे पीछे कोई नहीं, ये आराम से सेवा करते रहेंगे, इनकी भी इच्छा है और आप लोग भी अपना रिटायरमेंट प्लान बनाओ। तो उनको अच्छा लगा, तो फिर अगले दिन उन्होंने सनातन गोस्वामी पाद जब आए बोले बाबा जी मदन मोहन ने आदेश किया है कि आपके पास आना चाहते हैं, आपसे सेवा प्राप्त करना चाहते हैं। सनातन गोस्वामी पाद बड़े प्रसन्न हुए और उनको द्वादश आदित्य टील के पास लाकर वहां रख दिया और एक वृक्ष के आड़ में रखकर उनकी सेवा करने लगे। लेकिन पहले ही उन्होंने कंडीशन निर्धारित कर दिया था कि हम यहाँ पर आपकी सेवा करेंगे तो केवल सिंपल तरीके से, क्योंकि स्वामी का आदेश है हमारे महाप्रभु का ग्रंथ लिखना, ग्रंथ सेवा, यहाँ पे मैं ग्रंथ सेवा के लिए आया हूँ, अर्च सेवा के लिए नहीं है, कि नहीं। तो फिर अचानक एक दिन मदन मोहन जी बोल पड़े कि बाटी खिला रहे हो बिना नमक के, थोड़ा नमक तो दे दो। तो सनातन गोस्वामी भड़क गए, बोले पहले ही बोला था, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हम लोगों ने, बिना नमक के सब होगा, आज नमक मांग रहे हो, कल राजभोग मांगोगे, फिर 56 भोग मांगोगे, है कि नहीं? तो इसलिए ये मत सोचो कि नमक को लेके झगड़ा केवल घर घर में होता है, बाबा लोगों में भी होता है। तो सनातन गोस्वामी और मदन मोहन के बीच कंट्रोवर्सी हुआ तो किसको लेके? नमक को लेके। तो फिर यमुना में चौबे अपने जा रहे थे, अपने कपूर साहब, रामदास कपूर, उनकी नौका जा रही थी, वो फंस गई, फंस गई। तो मदन मोहन वहाँ खेलते हुए उनके पास आए, बोले अरे वो बाबा के पास जाओ, नौका ठीक कर देंगे। मदन मोहन के पास गए तो मदन मोहन बोले आप प्रार्थना कर लो, अगर आपकी प्रार्थना पूरी हो गई तो अच्छी बात है। तो रामदास कपूर ने संकल्प किया कि अगर ये छूट गई तो इसके अंदर जो माल है उसका मुनाफा से मैं इनके लिए मंदिर बनाऊंगा। सनातन गोस्वामी पाद ने पूछा कि नौका के अंदर क्या है? बोले नमक है। तो सनातन गोस्वामी पाद समझ गए कि भगवान को मैंने नमक को लेकर अटकाया था, अभी जिस नमक को देखकर मुझे लगा कि यह समस्या है और भगवान के ही सामने मैं प्रश्न उठा रहा था कि ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, भगवान ने उसी नमक को साधन बनाकर अपने लिए समाधान तैयार कर दिया। इसलिए भगवान के और भगवान के प्रोजेक्ट के सामने आकर कभी प्रश्न न किया जाए, क्योंकि उचित समय पर भगवान ही उस प्रश्न का उत्तर देंगे। जो नमक उस समय समस्या और दरिद्रता का कारण बन रहा था, वही समाधान और ऐश्वर्य का कारण बना। तो इसलिए फिर मुनाफा हुआ और उसके बाद रामदास कपूर ने 1580 में मदन मोहन जी के लिए ये बड़ा मंदिर बनाया। और ये मंदिर जो है पूरे ब्रज का एक बड़ा ही आधार स्तंभ है। जैसे न्यूयॉर्क में आप लोग जाते हैं तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखते हैं, उसको देखकर समझ जाते हैं न्यूयॉर्क है, वैसे ही मदन मोहन को दूर से देखने पर सब लोग समझ जाते हैं वृंदावन की छवि है। तो श्रील प्रभुपाद जी फिर 1968 में जब न्यू वृंदावन में स्थापना किए तो प्रभुपाद की इच्छा थी कि वो वहां पर 7 मंदिर की स्थापना करें, प्रभुपाद जी की बड़ी तीव्र इच्छा थी। तो फिर 1572 में प्रभुपाद जी अपना 1972 में प्रभुपाद जी ने जब मदन राधा गोविंद देव के मंदिर का फाउंडेशन रखा, उसके तुरंत बाद वहां के लीडर को लगा कि हम लोगों को चाहिए कि प्रभुपाद जी के लिए हम यहाँ पर एक सुंदर घर बनाएं जिससे प्रभुपाद आकर रहें और हम लोगों को बताएं कि वृंदावन का निर्माण किस तरह किया जाए, क्योंकि वृंदावन का रेप्लिका बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने प्रभुपाद जी के लिए घर बनाना स्टार्ट किया जिसका नाम हो गया प्रभुपाद पैलेस ऑफ गोल्ड। और वो लेकिन तैयार हुआ केवल 1980 में, प्रभुपाद चले गए 1977 में। तो इसलिए प्रभुपाद के जीते जी उस समय वो हो नहीं पाया और प्रभुपाद आकर न्यू वृंदावन में 7 मंदिर स्थापना नहीं कर पाए। तो इसी बीच यहाँ पर हम देखते हैं राधानाथ महाराज का एंट्री होता है। वो भगवान को खोजते हुए शिकागो से निकलकर भारत में प्रवेश करके फिर वृंदावन में आते हैं और वृंदावन में आने के पश्चात वो संकल्प करते हैं कि मैं यहीं पर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। और वृंदावन में प्रतिदिन यमुना के तट पर वो चीरघाट के निकट सोते थे और प्रातःकालीन अरुणोदय की वेला में उठने के पश्चात वहाँ पर यमुना में स्नान करके सबसे पहले यमुना जी का स्नान करते हुए यमुना जी का जल लेकर वो मदन मोहन को देखकर मदन मोहन के सामने जल समर्पित करते थे। तो ये जो 1-1.5 वर्ष जो जर्नी होम में उन्होंने लिखा है कि चीरघाट पर वो सोया करते थे, तो आसपास रात्रि के समय यमुना के तट पर जितने बाबा जी लोग कीर्तन इत्यादि गाया करते थे वो कीर्तन की ध्वनि सुनते सुनते वो सोते थे और सुबह मंदिरों की घंटी सुनते वो उठते थे और उठने के पश्चात चाहे वो ग्रीष्मकाल हो या शीतकाल हो यमुना के जल में उतरकर वो स्नान करते हुए सर्वप्रथम दर्शन लेते थे मदन मोहन के इस मंदिर का और उनको यमुना जी का जल समर्पित करते थे। 1971 में राधानाथ स्वामी की आयु थी 21 वर्ष। तो 21 वर्ष में उनके मन में छाए हुए थे मदन मोहन, मदन नहीं मदन मोहन। तो इसलिए वहां से उनकी यात्रा शुरू हुई कि तत्पश्चात एक दो वर्ष के बाद जब वो न्यू वृंदावन आए तो न्यू वृंदावन में उनको बताया गया कि उनको एक स्थान में रहना है और उस स्थान के बाहर एक लकीर खींच दी और बोले इसको क्रॉस नहीं कर सकते आप, जीवन भर आपको इस लकीर के पीछे ही रहना है और वहां सेवा करनी है। और उस समय लोगों को लगता था, वहां के लीडर को लगता था, ये इतने वृंदावन की बात करते हैं कि इनकी बात सुनकर सभी लोग वृंदावन ही चले जाएंगे। तो राधानाथ महाराज के ऊपर एक उन्होंने नियम लगाया था कि किसी को वृंदावन की कथा तुम नहीं सुनाएगा यहाँ पर, क्योंकि तुम जिस तरीके से वृंदावन की कथा सुनाता है उसको सुनकर लोग गदगद होकर पागल होकर वृंदावन ही चले जाएंगे और न्यू वृंदावन खाली हो जाएगा। तो इसलिए महाराज जी वहाँ बैठकर ओल्ड वृंदावन में भजन किया करते थे, राधा वृंदावन नाथ भगवान की सेवा करते थे। और उस समय 1973 की बात है, उनको ये घोषित किया गया कि भविष्य में आप वृंदावन जाओगे नहीं। और उस समय ना फोटो थे, ना वेबसाइट था, ना फेसबुक था, ना व्हाट्सएप था, कोई साधन नहीं थे। तो किसी चित्र को अपने पास स्थापित करके सुरक्षित रखने का एक ही तरीका था कि उसका स्मरण करो। तो वो प्रतिदिन भोजन करने से पहले आधा घंटा बैठकर आंखें बंद करके पूरे वृंदावन की परिक्रमा करते थे लगभग 9 साल तक, 1973 से लेकर लगभग 81 तक। आधा घंटा आंख बंद करके स्मरण करना कि वो उठ गए, अब वो यमुना में स्नान कर रहे हैं, यमुना स्नान करते करते मदन मोहन को जल समर्पित कर रहे हैं, उसके बाद मदन मोहन मंदिर में दर्शन के लिए गए, गोविंद देव में गए, राधा रमन के लिए गए, गोपीनाथ में गए, फिर गोवर्धन परिक्रमा किया, अलग अलग बाबा जियों से मिले। पूरा आधा घंटा की परिक्रमा हर रोज बिना एक दिन मिस किए 9 साल किए हैं उस समय। तो इसलिए ये जो है वास्तव में मदन मोहन की कथा का मेन पार्ट है कि हम लोग इस प्रकार का तीव्र ब्रज का, वृंदावन का और श्री कृष्ण की सेवा का चिंतन कर सकें, तो ये हमारे भजन के जीवन की वास्तविक सफलता है। हम लोग दीक्षा लिए हैं, साधना भक्ति आरंभ किए हैं जिससे हम लोग अपने स्मरण को तीव्र कर सकें, और प्रतिदिन हम लोग 16 माला करते हैं इस उद्देश्य से कि ऐसा करते करते कृष्ण के स्मरण का अभ्यास हमारे हृदय के अंदर तीव्रता के साथ उतर जाए और वो पत्थर की लकीर बन जाए। तो इसलिए ये स्मरण वो निरंतर किया करते थे, लेकिन ये सब उन्होंने अभी हमको बताया, ये पहले नहीं पता था। ये सब मंदिर बनने के बाद, उद्घाटन होने के बाद, विग्रह स्थापित होने के बाद बताया कि मैं क्या करता था। लेकिन यहां पर चौपाटी में जब से वो आए 1988 से, तब से फार्मलैंड ढूंढने का वो प्रयास कर रहे हैं। मैं भी जब किर्लोस्कर में काम करता था, तलेगांव में गया था लैंड देखने के लिए, फार्म प्रोजेक्ट का लैंड देखना है करके। तो कितने ही लैंड हम लोग ने देखा, पहले दौंड में भी फार्म चलाया कुछ साल, उसके बाद यहाँ 2003 में आए। लेकिन उस सभी के बीच ये इच्छा बड़ी तीव्र थी कि वृंदावन की एक छवि जो न्यू वृंदावन में बनानी थी वो हम यहाँ बनाएं। तो साथ साथ न्यू वृंदावन जब पुनः इस्कॉन में आ गया 97 में, तब महाराज ने फिर जयगोपाल प्रभु को भेजा उनको वृंदावन में 7 मंदिर का पूरा नक्शा निकालने, और फिर पुणे यूनिवर्सिटी के थ्रू परमिशन के लिए उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे को लेटर लिखा, फिर जाके उनका लेटर में ले के उन्होंने पूरा इसका नक्शा निकाला। मेरे ख्याल से क्षीरचोर प्रभु भी गए थे, कीर्ति तुम भी गया था ना, ये भी गए थे। 2 अलग अलग आर्किटेक्ट को भेजा था महाराज ने 97 में पूरा इसका निकालने के लिए नक्शा, जिससे कि हम लोग इसको बना सकें। फिर एक सेट उन्होंने अपने पास रखा, एक सेट भेजा न्यू वृंदावन। महाराज ने स्वयं कुछ करोड़ रुपए, कई करोड़ रुपए इकट्ठा किए 3 साल, फिर उसका भी उपयोग और कहीं हो गया। इस तरह होते होते लगभग 2009 में जब हम लोग ने यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, हाँ लगभग 2006 में महाराज ने अलग अलग जो हमारे वृंदावन फॉरेस्ट में, आप लोगों ने डायरामा देखा होगा आज, कितने लोगों ने सब लीला देखी जो रखे हुए वृंदावन फॉरेस्ट के अंदर, डायरामा मूर्ति, मूर्ति देखी सब जगह रखा हुआ है लीला की, कितने लोगों ने देखी। हाँ तो वो बना 2006 में, प्रोजेक्ट यहाँ पे हम लोग का कंस्ट्रक्शन चालू हुआ 2010 में, वो मूर्तियां बन गई थी 2006 में। क्यों? महाराज ने कहा भविष्य में हम लोग का वृंदावन यहाँ पे बनेगा तब उसमें वो काम आएगा। वो जो कारीगर है वो आगे भविष्य में जिएगा नहीं जिएगा भरोसा नहीं है, जब तक वो जीवित है उसके हाथ से बनवा लो। वो कारीगर 2010 में, 2011 में वो शरीर छोड़ दिए, 2006 में उनसे बनवा के रखा था, 10 साल ये डायरामा धूल खा रहे थे गोडाउन में। और बाकी ब्रह्मचारी जो नया नया यहाँ है सब गोडाउन के अंदर जाकर पूछते थे ये क्या है, ये इतने सारे मूर्तियां रखे हुए ये क्या है कि नहीं। तो कई बार सेवा इतनी जल्दी नहीं मिलती, समय लगता है सेवा की सार्थकता को समझने के लिए। तो उन मूर्तियों को सेवा मिली 2016 में, और फिर अपने माँ भागवत प्रभु ने और बहुत सारे डायरामा और जोड़ दिए। सो कुल मिला के बृहद भागवतामृत में संस्कृत के श्लोकों में लिखा हुआ है किस प्रकार कृष्ण ने स्वयं ब्रह्मा जी को बोलकर इस तरह के डायरामा बनवाकर द्वारका में आसपास रखवा दिए, जिससे कि कृष्ण स्वयं ब्रह्मा वृंदावन का चिंतन कर सके। तो ये जो वृंदावन का रेप्लिका है इसको बृहद भागवतामृत में नाम दिया है नव वृंदावन, और नव वृंदावन की स्थापना कृष्ण ने स्वयं की कहाँ, द्वारका में। आर्किटेक्ट कौन थे? ब्रह्मा जी। कॉन्ट्रैक्टर कौन थे? विश्वकर्मा। कृष्ण थे, इसलिए डायरेक्ट ब्रह्मांड के बड़े बड़े लोगों को लगा दिया काम पे। तब जाकर कृष्ण स्वयं इसमें भ्रमण करते थे स्मरण करते हुए। तो इसलिए मैंने पहले बताया आपको इंटरेस्ट किसी आइटम में कब आता है, जब आपकी उस कार्य में रुचि हो। तो खाने की रुचि होती है तो होटल को देख के लगता है कितना बढ़िया चल रहा है, लेकिन कृष्ण का और कृष्ण के लीलाओं के चिंतन करने का जिसको मूड ही नहीं है, वो वृंदावन और सारे डायरामा और लीला को और सब कुछ देख के भी सोचेगा ये क्यों बना दिया इधर। इसका अर्थ क्या है कि चिंतन करने में हम लोगों की अभी रुचि नहीं हुई है। तो इसलिए जो महान संतगण आते हैं इस वृंदावन में, इस वृंदावन को देख के इसका स्मरण करने का इनका भाव बढ़ता है। हम लोग जब इस वृंदावन में आते हैं इस वृंदावन के छवि को देखकर और हमारे मन में वृंदावन के विपरीत विचारों को देखकर हमारी बीमार अवस्था का एक आइडिया लगता है ये वृंदावन फॉरेस्ट हम लोगों के लिए थर्मामीटर है कि अपनी बीमारी कितनी है, उसका आइडिया हमको यहाँ प्रवेश करके लगेगा कि यहाँ लीला ये दिखा रही है लेकिन यहाँ क्या चल रहा है। तो शुद्ध भक्तों के लिए ये उत्सव है और हम लोगों के लिए थर्मामीटर है, इसलिए यहाँ पर प्रवेश करो तो समझो कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य यही है। जो यमुना आरती के समय अपन दूसरी तरफ देखते हैं सारे शुद्ध भक्तों को, शुद्ध भक्ति प्राप्त होने के बाद वही दिखता है, मृत्यु के बाद जो विरले जीव शरीर छोड़कर जब जाते हैं वही जाते हैं, जो यमुना आरती में अपन आरती घुमा रहे हैं और जो देख रहे हैं वही जाते हैं, वही सत्य है, वही एकमात्र है और कुछ नहीं है। लेकिन हमको लगता है हम लोग ये क्या कर क्या रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर इस वृंदावन के बीच अलग अलग मंदिरों की स्थापना करने की इच्छा से महाराज ने व्यक्त किया, और फिर कई लोग सामने आए और हम लोगों ने मंदिर वहाँ पे बना दिए। फिर 2015 में जीबीसी मीटिंग में कई जीबीसी लोग आए और उन लोगों ने बड़ा अच्छा अच्छा वृंदावन के बारे में बताया, उनका एक वीडियो बनाया। उस वीडियो को जब महाराज देखे, उसको देखने के बाद अचानक बोले मेरे मन में एक और आइडिया आ रहा है। मैंने कहा आपके आइडिया से तो हमको घबराहट होती है। उन्होंने कहा लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ। मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा एक बड़ा मदन मोहन बनाएंगे। हमने कहा हमने तो ऑलरेडी बनाया है। बोले नहीं वो छोटा है, बड़ा मतलब फुल साइज। कैसा लगा आइडिया? मेरा मन कह रहा था बिल्कुल नहीं, लेकिन सामने से कह दिया आप जैसा बोलो। तो फिर जय गोपाल दास को फोन किया और जो 97 में नक्शा उन्होंने निकाला था उन्होंने कुरियर से भेजा उसको। खैर वो तो उसके लिए हमने मंगा लिया था छोटे वाले के लिए, और उस डिज़ाइन के आधार पर फिर ये बड़ा वाला बन पाया। अगर 97 में वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे का परमिशन लेकर अगर एग्जैक्ट डायमेंशंस नहीं लेते थे तो इस प्रकार से सटीक मंदिर नहीं बन सकता था। तो सेवा की थी उन्होंने 97 में, उस सेवा का लाभ मिला 2017 में, 20 साल बाद। तब जाकर फिर इस मंदिर के निर्माण में राधा गिरधारी प्रभु और उनके परिवार ने बहुत योगदान दिया आर्थिक रूप से। और फिर तत्पश्चात मदन मोहन के विग्रहों को लाने में शिवानंद प्रभु और महाभागवत प्रभु ने बहुत सारी लीलाएं की जिसको हम पब्लिक फोरम में नहीं बता सकते, बहुत इंटीमेट और बहुत ही उसमें कई उतार चढ़ाव वाली कथाएं हैं उसमें। लेकिन मदन मोहन जी की विशेष इच्छा थी और मदन मोहन के सेवकों की विशेष अनुग्रह था, और फिर अनुपम गौरांग प्रभु वो भी उसमें एक पात्र थे। तो इन तीन लोगों की जोड़ी ने कई लीलाएं देखी जो आप प्राइवेट में उनको कभी पूछ सकते हो बिना रिकॉर्डिंग के, और जिसको सुन के आप फेसबुक में मत डाल देना। लेकिन कुल मिलाकर मदन मोहन देव यहाँ पर राधानाथ महाराज के ही तीव्र इच्छा के कारण प्रकट हुए हैं। हम में से किसी का दूर दूर तक न आइडिया था, न इच्छा थी, न कहीं प्रकार से स्वप्न भी था। तो इसलिए यहाँ बैठकर इन मदन मोहन के बारे में बोलने का मेरा कोई अधिकार है ही नहीं, क्योंकि मैं तो महाराज को ही ट्राई कर रहा था कि वो ही थोड़ा भूल जाए तो अच्छा है। आप भी भूल जाओ, आपको भी शांति, हमें भी शांति। लेकिन ये प्रकट होने के बाद फिर महाराज फरवरी के महीने में मेरे को बोलते हैं, मैंने ये क्यों बनवाया पता है क्या? मैंने कहा बन तो गया, बता ही दीजिए। तब फिर उन्होंने बताया कि मैं ऐसा स्मरण करता था और मेरी बड़ी इच्छा थी कि इसको प्रकट करना, और वो जो छोटा बन रहा था तभी मेरे को बड़ा बनवाना था, लेकिन मुझे डर लगा कि फाइनेंस कमेटी गुस्सा हो जाएंगे और बाकी भी सब काम बंद करवा देंगे। इसलिए मैंने जब देखा सब कुछ हो गया तो फिर लास्ट में जो एक 40 साल से मेरे मन से मदन मोहन निकल ही नहीं रहे तो मैं क्या करूं, तो शायद कुछ इच्छा होगी उनकी कहीं ना कहीं प्रकट होने की। तो सबसे पहले मदन मोहन को महाराज ने कहां प्रकट किया? चौपाटी में। तो चौपाटी में पहले बैकड्रॉप में आते थे, बैकड्रॉप में, फिर उसके बाद नीचे वृंदावन फॉरेस्ट में आप पीछे देखे होंगे वो फाइबर का बनवाया, उसमें भी नरहरिदास को लगाया 3 दिन बिना सोए, 3 दिन लगातार उनको लगाया उसको बनाने के लिए। फिर करौली से कोई मदन मोहन का एक छोटा सा एक पत्थर लेके आए, मंदिर का एक छोटा सा पार्ट गिफ्ट में दिया, उसके लिए बड़ा फेस्टिवल किया। वो मदन मोहन मंदिर वहाँ जो चौपाटी है उसके पीछे लॉक में रहता था वो, आजकल पता नहीं कहाँ है, वो दिखता नहीं, वो छोटा सा एक पत्थर का टुकड़ा याद है कहाँ है मालूम है? अभी मैं जाके देखा वो नहीं था, किसी ने गायब कर दिया, शायद किसी को मालूम नहीं होगा है क्या, किसी ने उठा के फेंक भी दिया होगा, भरोसा नहीं। तो वो वहां मदन मोहन है कि नहीं? और उसके बाद फिर महाराज ने 2008 में लिखा अपना बुक द जर्नी होम, उसका कवर में क्या डाला? मदन मोहन। फिर यहां पर बना मदन मोहन, फिर यहां बना मदन मोहन। तो इसलिए जिनके मन में मदन मोहन आविष्ट हुए हैं तो उनकी इच्छा से फिर ये मंदिर आप लोग जो देख रहे हो ये प्रकट हुआ है। और विश्व के बड़े प्रसिद्ध लाइटिंग एक्सपर्ट हैं अपने कैलिफोर्निया के, क्या नाम है उनका, बाबू शंकर। तो बाबू शंकर जी और उनके टीम में से कांति जी, किरण जी, उन्होंने ये लाइटिंग डिज़ाइन किया है। विश्व का सबसे प्रसिद्ध लाइटिंग कंपनी है मेयर, और मेयर के 8 लाइट्स यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त इसका लाइटिंग भी किया गया है। और अभी मॉनसून शेड के लिए तैयारी हो रही है। महाराज ने मॉनसून शेड वाले टीम को बोल के रखा है कि अगर मुझे अच्छा नहीं लगा जिस तरह से आप लोग लगाओ तो मैं अगस्त में आके उखाड़ के फेंक दूंगा इसको। तो इस तरह से लगाओ जो इसके साथ मैच होना चाहिए और नीट एंड क्लीन लगना चाहिए, आलतू फालतू नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर मॉनसून की तैयारी हो रही है। और आप लोग सभी यहाँ मदन मोहन की यात्रा के लिए आए, एक फोटो ले लो सबका ऐसे बैठे हुए, महाराज को हम भेजेंगे। आप लो तो इस तरह से ये मदन मोहन का जो यहाँ पर यात्रा आयोजित किया गया, मदन मोहन के चंदन यात्रा के दर्शन का, ये बड़ा ही ऐतिहासिक है। क्योंकि मदन मोहन के विग्रह की स्थापना के पश्चात मेरे विचार में ये प्रथम बार उनको पूर्ण चंदन से अलंकार किया गया है। तो जितने लोग इस चंदन को उत्पादन करने में सहायता किए उन सभी को धन्यवाद, और बाकी लोग जो श्रृंगार में इसमें भाग लिए उनको धन्यवाद। और आज के संपूर्ण दिवस के इस मदन मोहन परिक्रमा कार्यक्रम में आयोजना करने वाले सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी लोग इतने गर्मी में, अग्नि नक्षत्र जब चल रहा है तब बम्बे के शीतल हवा को छोड़कर गोवर्धन इको विलेज के गर्मी खाने आए, आपके साहस को भी हम दाग देते हैं। और आप लोग मदन मोहन के शीतल दर्शन को देखकर ठंडक अनुभव करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। इन शब्दों के साथ मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। हम लोग गौरांग प्रभु का 3 बार हरि पल पल के स्वागत करेंगे। इतना सुंदर क्लास देंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। अभी कुछ समय के बाद पश्चात आरती होगी मदन मोहन जी की। एक्चुअली हाँ, तो यमुना आरती के बाद हम लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आएंगे। तो सब लोग अभी यमुना आरती की तरफ प्रस्थान करेंगे। हरे कृष्ण, हरि बोल।